जानवी अरुणिमा के गले लगे हुए उसके कंधे पर सुबकते हुए कहती है, भाभी अगर कभी भी आपको अपनी बहन की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा आपके साथ मौजूद रहूंगी। जानवी की बात सुनकर अरुणिमा खुश तो हुई थी, लेकिन उसे हैरानी भी हो रही थी कि जानवी उसे ऐसे क्यों बात कर रही है। वो जानवी को खुद से अलग करती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, क्या हुआ जानवी, तुम परेशान लग रही हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? जानवी अपने आंसू साफ करती है और ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं भाभी, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, मैं बस ये कह रही थी कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तभी बाहर से आतिशबाजियों की आवाज़ आने लगी। अरुणिमा ने कहा, अच्छा ठीक है, ये सारी बातें बाद में होती रहेगी, पहले चलो बारात का स्वागत करना है। अरुणिमा और जानवी बाहर आते हैं। बाहर पहले से ही आस्तिक और पृथ्वी ताई के साथ मौजूद थे। ताई ने जीवन का स्वागत किया और बारातियों का भी स्वागत किया। थोड़ी ही देर में शादी की विधियां शुरू हो गई। तभी महल के दरवाजे पर एक और गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से सक्षम अपने हाथ में फूलों का बुके लेकर बाहर निकलता है। हालांकि सक्षम का मन भारी हो रहा था इस शादी में आने के लिए, लेकिन क्योंकि उसने आस्तिक को प्रॉमिस किया था कि वो शादी में ज़रूर आएगा, इसीलिए उसे आना ही पड़ा। सक्षम मंडप के पास आता है तो उसकी निगाहें इस समय जीवन पर थीं। जीवन को देखकर सक्षम की आंखें तीखी हो गईं। तभी वहां पर आस्तिक आता है और कहता है, सक्षम आप आ गए, आइए बैठिए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। सक्षम मुस्कुराते हुए आस्तिक को देखकर कहता है, आता कैसे नहीं राजा साहब, आपने इतने प्यार से जो बुलाया था। जीवन की नज़र उस तरफ जाती है जहां से जानवी और कीर्ति प्रणाली को लेकर आ रहे थे। सक्षम की नज़र तो प्रणाली के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। सच में प्रणाली आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और दुल्हन के निखार में तो उसके चेहरे की रौनक देखते बन रही थी। जब आस्तिक ने प्रणाली को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंख भर आई थी। जाहिर सी बात है, उसके भाई बहन कभी भी उसके लिए भाई बहन नहीं थे, बल्कि उसके बच्चे के जैसे ही थे। उसने अपने जीवन में जितनी भी दुख और तकलीफ उठाई हैं, वो कभी नहीं चाहता था कि उसके भाई बहन वो दुख और तकलीफ उठाएं। प्रणाली और कीर्ति तो हमेशा से ही आस्तिक की जान रहे हैं। वो पृथ्वी को तो कभी कभार गाड़ भी देता था, लेकिन अपनी बहनों के साथ तो उसने कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। आस्तिक हमेशा से ही प्रणाली में अपनी ही परछाई देखता आया है, क्योंकि सिर्फ एक प्रणाली ही थी जिसने आस्तिक को बहुत करीब से जाना था। इसीलिए अपने भाई के सर को ऊंचा रखने के लिए प्रणाली हमेशा ही सबसे पहले आई है। जितना गुरूर और जितना स्वाभिमान आस्तिक में था, उतना ही गुरूर और उतना ही स्वाभिमान प्रणाली में भी था। लेकिन वो गुरूर और घमंड के बीच जो पतली सी दीवार होती है, प्रणाली शायद उसे पार कर गई थी। आज अपनी उस छोटी सी प्रणाली को दुल्हन के रूप में देखकर आस्तिक भावुक हो गया था। आज प्रणाली की शादी हो रही है, देखते ही देखते कीर्ति की भी शादी हो जाएगी और उसके बाद आस्तिक फिर से अकेला हो जाएगा। हाँ, पृथ्वी है उसके साथ, लेकिन उसका भी तो अपना परिवार है। प्रणाली को जीवन के पास लाकर बिठा दिया जाता है और पंडित जी शादी की रस्में कर रहे थे। जीवन और प्रणाली एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। पर वहीं दूसरी तरफ महल के पिछले हिस्से में रजत अपनी टीम के साथ था। वो अपने एक ऑफिसर मयंक को कहता है, क्या आप लोग तैयार हैं? मयंक ने कहा, रजत सर फिर से सोच लीजिए, राजा साहब से डायरेक्ट पंगे लेना हमारे लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। माना राजा साहब अपनी प्रजा के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने परिवार की तरफ उठने वाली हर उंगली को वो हाथ के साथ काट देते हैं। रजत कहता है, हम यहाँ पर राजा साहब से कोई दुश्मनी मोल लेने के लिए नहीं आए हैं, ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस देश के एक गद्दार को पकड़ने के लिए आए हैं, और हमें किस बात का डर है, हम पूरे प्रूफ के साथ और अरेस्ट वारंट के साथ हैं। तभी वहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है और वो रजत के साथ मिलकर कुछ बात करती है। रजत एक नज़र महल को देखा है और अपने मन में कहता है, मुझे माफ़ कर दे अरु, तू मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन मेरा फ़र्ज हर रिश्ते से पहले आता है। शादी के मंत्र पढ़े जा रहे थे और सारी विधियां एक के बाद एक करी जा रही थीं। प्रणाली के चेहरे की चमक देखते बन रही थी। हालांकि जीवन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी, लेकिन वो अपनी एक नज़र से जानवी को देख रहा था और उसकी नज़रें रह रहकर अरुणिमा पर जा रही थीं, जो मेहमान के साथ बिजी थीं। जीवन अपने मन में अरुणिमा को देखकर सोचता है, भाभी जी क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? मैंने कहा ना आपसे कि बहुत जल्द मैं आपको इस कैद से आज़ाद कर दूंगा और इस कैद से निकालकर मैं आपको अपने कैद में ले जाऊंगा। सच में जब से आपको देखा है तब से मन में बस यही एक ख्वाहिश है कि एक बार देखूं तो सही कि आप में ऐसा क्या है जो खुद आस्तिक जैसा मॉन्स्टर इंसान आपके पीछे दीवाना हो गया है। सक्षम की निगाहें बस प्रणाली के ऊपर ही थीं। तभी सक्षम के सामने एक जूस का ग्लास आता है। सक्षम अपना चेहरा उठाकर देखता है तो सामने कीर्ति सक्षम को मुस्कुराते हुए देखकर कहती है, आप बहुत देर से ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ ले नहीं रहे हैं? सक्षम मुस्कुराते हुए कीर्ति के हाथ से जूस का ग्लास लेता है और कहता है, शुक्रिया छोटी राजकुमारी जी, पर मैं बस यहाँ पर राजा साहब के कहने पर आया था। जैसे ही वरमाला की रस्म खत्म होगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कीर्ति का चेहरा जो अभी तक सक्षम के आने से खिला हुआ था वो अचानक से मुरझा जाता है और वो कहती है, मतलब आप शादी खत्म होने तक यहाँ नहीं रुकेंगे? सक्षम कहता है, नहीं, दरअसल सुबह मेरी मुंबई की फ्लाइट है, मुझे एक बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए मुंबई जाना था, वो तो मैं राजा साहब के कहने पर यहाँ आ गया था। उसके बाद सक्षम प्रणाली को देखते हुए कहता है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता, सब लोग वहाँ शादी के माहौल में बिजी थे। जीवन और प्रणाली अपनी जगह पर खड़े होते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। प्रणाली मुस्कुराते हुए जीवन को देख रही थी और जीवन के चेहरे पर भी एक नकली मुस्कान थी। प्रणाली और जीवन अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। पंडित जी जीवन से कहते हैं, अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। जीवन अपना हाथ बढ़ाकर सिंदूरदानी में से सिंदूर उठाता है, पर इससे पहले कि वो प्रणाली की मांग तक पहुंच पाता वहां पर एक जोरदार आवाज आती है, यू आर अंडर अरेस्ट। इस आवाज पर सब चौंक जाते हैं, जीवन के हाथ अपनी जगह पर रुक जाते हैं। प्रणाली भी हैरानी से सामने की तरफ देखती है, यहाँ तक कि आस्तिक, पृथ्वी, अरुणिमा, जानवी और सक्षम और कीर्ति भी उस तरफ देखते हैं। सभी मेहमानों का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है जहाँ से रजत और पुलिस अपनी टीम के साथ अंदर आ रहे थे। रजत अपनी टीम के साथ बेकुल मंडप के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जीवन को देखकर कहता है, मिस्टर जीवन, आपको अरेस्ट किया जाता है।